ओम शांति।
सदा खुशी कायम रहे उसके लिए क्या करना है? कल का स्लोगन है ये। सदा खुशी कायम रहे उसके लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान और योग का घृत डालते रहो। तो ये जो मुरली है ये आत्मा रूपी दीपक में घृत का काम करती है, तो सदा खुशी कायम रहेगी। तो मुरली में आज की मुरली पर डिस्कशन करेंगे। आज बाबा ने ब्राह्मण संसार के बारे में महिमा की है, उसकी विशेषताएं बताई हैं, गायन उसका और क्या क्या ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, दिनचर्या कैसी है, ब्राह्मणों को क्या क्या मिला है, ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, धर्म कर्म क्या है, दृष्टि वृत्ति कृति कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी बातें आज की मुरली में है। तो ये छोटा सा संगम युग है, ये और संगम युग कैसा है? अति प्यारा न्यारा और आई बाबा ने कहा संगम युग स्वर्ग है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्यों, क्या कारण है उसका? हाँ, क्योंकि नॉलेजफुल बने अभी दोनों युगों के, है ना, कंट्रास्ट है। तो इसमें हम चोटी पर खड़े हैं, इसलिए ये संगम युग स्वर्ग है, ये उस सतयुग से भी बेहतर है, श्रेष्ठ है, सुखदाई है। तो और पंख कौन से दिए बाबा ने? ज्ञान योग के पंख दिए। उससे क्या होता है? उड़ते हैं और बीच में पतंग की डोरा है। तो उस ज्ञान और पंख से कितने फायदे बताया, ज्ञान योग के पंखों से आत्मा को क्या होता है, एग्जाम्पल भी है साथ में उधर, शक्ति बढ़ती है। और बाबा ने कहा तीनों लोकों की सैर कर सकते हो, है ना, बताया था ना। और वो एग्जाम्पल कौन सा दिया था? साइंस वाले जो हैं वो तेज गति के रॉकेट उनके पास भी नहीं जितना हमारे पास है, उनके साधन भी इतने तीव्र गति से काम नहीं करते हैं। तो ये पंख दिया और क्या क्या दिया पहले आप बताओ। दुआएं जमा करने का तरीका क्या बताया? मीठा बन के रहो, कितना मीठा, मीठा तो खा के आए ना अभी, है ना, चाशनी ज्यादा मीठा भी नहीं, फिर चींटियां भी लग जाती हैं। तो क्या साधन बताया, दुआएं जमा करेंगे उसका साधन क्या है? और बाबा ने कहा हां जी करना, बताया था कि नहीं? तो और भी दुआ करने के साधन जमा है, करने के बहुत सारी बातें हैं। और यूथ के लिए क्या बोला राजू भाई जी? यूथ के लिए क्या बोला? हाँ, कौन कौन सी? पैदल वाली, बस वाली, पैदल वाली, रूहानियत जैसे आपके चेहरे पर दिखाई देती है हमेशा। तो आज रचयिता बाप ने क्या देखा? अलौकिक सुंदर परिवार को देखा। ये परिवार कैसा है? अलौकिक है, सुंदर है और न्यारा है, प्यारा है। हर आत्मा कैसी है? विशेष आत्मा है, महान आत्मा है। तो ये है जी, हाँ वो, हाँ आगे फिर उसकी महिमा बताई है कि इस संसार की जो ब्राह्मण आत्माएं हैं ये संगम सतयुगी संसार से भी ऊंच आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि इनकी महिमा है कौन सी, कि इनको स्वराज्य अधिकारी का तिलक मिला हुआ है, स्वराज्य अधिकारी, और ये अविनाशी तिलक मिला हुआ है, सदा काल का है, मिटता नहीं है ये, क्योंकि स्मृति है। और तख्त मिला हुआ है, और क्या मिला है? ताज, तख्त और तिलक, तीनों चीजें तुम संसार के लिए है, मिला नहीं है। बाबा ने कहा तुम ताज तख्त और तिलकधारी सारे संसार के लिए, तो ये इसकी महिमा है। और इसका गायन क्या है? नौ बातों में गायन बताया, कौन कौन सी? एक बाप, दूसरा मैं, तीसरे आप। एक बाप और दूसरा परिवार, एक परिवार और एक नॉलेज अर्थात एक ज्ञान, एक भाषा, एक आगे राज्य नहीं है, इसमें राज्य बना सकते हैं वैसे तो, एक बहुत सारे हैं, एक श्रेष्ठ लक्ष्य है, एक ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है, और एक दृष्टि, एक वृत्ति, एक धर्म, एक कर्म, ये सारी 9 बातें हैं। और इन 9 बातों में कितना सारा विस्तार है। अब एक बाप ही संसार है, बाबा ने मुरली चलाई थी ना शांतिवन में अभी कुछ दिन पहले, अगर बाप ही आपका संसार है तो क्या करो। हाँ, तो संस्कार भी तो बाप जैसे होने चाहिए ना। तो एक बाप ही हमारा संसार है। संसार में क्या चीजें होती है, 2 मुख्य चीजें, व्यक्ति और वस्तु। व्यक्ति अर्थात संबंध संपर्क, और जिन वस्तुओं के हम संबंध संपर्क में आते हैं, जिनको यूज करते हैं, तो बाबा ही हमारा सर्व संबंधी है। एक बाप में ही सारा संसार समाया हुआ है। सारे दिन में हम अपनी स्वयं की जांच कर सकते हैं कि कहां कहां हमारा बुद्धि योग खंडित होता है, कौन से रिश्ते नाते ऐसे हैं जो हम बाबा से नहीं निभा पा रहे हैं, जो हमें बाहर की दुनिया वाले आकर्षित करते हैं बार बार। यहां आने के बाद भी कई बार होता है, देखा जाता है सेवा में आते हैं, लेकिन वो बाबा वाले दिन में मोबाइल वीडियो कॉल में लगे होते हैं, वो घर में बेटी को बता रहे हैं बाबा से मिलने जा रहे हैं, या कोई बेटे को बता रहे हैं। तो बुद्धि तो वहां जुड़ी हुई है। यहां आए माना यहां आए, मधुबन माना मधुबन, मधुबन में आकर बहुत बड़े सौभाग्य की लॉटरी मिलती है, सेवाओं के भंडार पर है। यहां हम जितना जमा करना चाहे कर सकते हैं, अगर हम यहां बैठे भी लौकिक को याद करते रहें तो नष्ट मौका बनेंगे। मोह को तो हमने फिर भी पकड़ के रखा हुआ है, तो यहां हम छोड़ने आए हैं संसार की जो आकर्षण है, उन आकर्षण से मुक्त होने आए हैं, और यहां भी अगर पकड़ के बैठे तो कैसे मुक्त होंगे। फिर घर जाके भी वही याद आएंगे, उल्टा हो जाता है, यहां आके घर की याद आती है, घर जाके मधुबन की याद आती है, उल्टा चक्कर चलता है। बांध जाएंगे, तड़फेंगे, इधर आना मधुबन, मधुबन जाना है, और यहां आकर सब घर वाले से चिपके हुए हैं, तो बैलेंस बना के रखते हैं ऐसे। तो ये हमको अपनी जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग बाप के साथ, जो बाबा ने कहा एक बाप ही तुम बच्चों का संसार है, तो क्या सचमुच हमारे सारे रिश्ते नाते संबंध बाबा से हम निभा पा रहे हैं, है ना। तो ये अपनी जांच खुद ही करनी है, है ना, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं की कर्मेंद्रिय में समाने के लिए है, स्वरूप बनने के लिए है, ज्ञान स्वरूप। एक बाबा ने स्लोगन बताया था कि जो बच्चे नम्रता और निर्भयता की शक्ति को धारण करते हैं वही कौन है, एक स्लोगन था, ज्ञान और योग के स्वरूप हैं वो। तो ये ज्ञान हमारे स्वरूप में झलकना चाहिए। तो ये 9 बातें, सबसे पहली बात बाबा ने बताई, बाप एक अब बाप ही तुम्हारा संसार है। तो सचमुच देखना हमारा जो संसार है, क्या उस संसार की मर्यादा के अंदर हम रह रहे हैं, उस संसार में हम बाबा के साथ पूरा प्रीत निभा रहे हैं। तो एक बाप, दूसरा क्या बताया, दूसरा एक परिवार, ये बेहद का परिवार मिला है। कैसा परिवार है ये, है छोटा सा लेकिन है बहुत बड़ा ये। लेकिन पहले तो भक्ति काल में हमने परिवार मांगा ही नहीं था, रूंग में मिल गया ये। तो एक बाप क्या भक्ति में प्रतिज्ञा की थी कि बाबा, बाप जब भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहारी जाएंगे, है ना। लेकिन बाबा ने कहा परिवार में पास तो सब में पास, परीक्षाएं तो परिवार में होती हैं आगे। और वास्तव में परिवार में अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है ना, तो अगर हमारी समझ ठीक है, एडजस्टमेंट पावर है, और समय समय पर हम एक दो को समझ लेते हैं, उसका स्वभाव संस्कार कैसा है, उसके साथ कैसे चलना है, तो परिवार सचमुच बहुत ही अच्छा है। कभी कभी अगर टकराव भी होता तो टकराव में बहुत सारा कल्याण होता है, ताकि हमारा उनसे जो मोह है ना टूट जाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं मोह की रगें भी धीरे धीरे पक्की होती जाती हैं, लौकिक से अलौकिक की तरफ हमारा मोह मजबूत हो जाता है। तो इसलिए आज के वरदान में भी था ना, क्या चीजें थी वरदान, क्या था आज का संगठन, संगठन की बात थी। इस संगठन में लक्ष्य और लक्षण 2 चीजें थी, है ना। तो संगठन में 2 चीजें और होती है, एक तो क्या होता है अलविलापन भी होता है, और 2 चीजें थी ना संगठन में, अटेंशन भी होता है, अलविलापन भी होता है। लेकिन हमको क्या करना है, वो अपने को देखना है। बाबा ने कहा एग्जाम्पल बनो, सबके सामने सैंपल बनो, तो शक्तिशाली बनेंगे, है ना। ये आज के वरदान में रहे, तो देखना है इस बेहद के परिवार के प्रति भी हमारी शुभ भावना शुभकामना है, या कोई कुछ कहता है तो हमारी भावनाओं के टुकड़े तो नहीं हो जाते अंदर ही अंदर, उसके प्रति कुछ षड्यंत्र रचते हैं, उसके प्रति नेगेटिव सोचते हैं। अगर हम उसके बारे में किसी को बोलते नहीं, अपने मन में भी रखते हैं, तो भी हम अपने बुद्धि के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर पापों का बोझा तो वृद्धि हो रही ना उसकी। इसलिए मन में भी किसी भी एक आत्मा के प्रति हमारी ऐसी कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। शुभ भावनाओं का भंडार हमेशा भरा रहना चाहिए। तो ये परिवार श्रेष्ठ परिवार है। सारे कल्प में हमको ये संगम ऊपर ये परिवार मिलता है। एक एक बाबा का बच्चा कहां कहां से आया है और कैसे कैसे उसके अनुभव हैं। एक एक का अनुभव सुनने तो कितने बाबा ने कहा क्या भर जाए। उस दिन बताया मुरलियों से क्या भर जाए, इतना बड़ा हॉल भर जाए, है ना। तो ये बाबा के बच्चों के भी कितने सारे चरित्र हैं जो केवल संगम में ऊपर देखने को मिलते हैं। तो परिवार श्रेष्ठ परिवार है ना। आज हम देखे ना, नीचे झारखंड के गवर्नर आए हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो जो एजुकेशन विंग वालों का चला, तो उनका जो है एक्सपीरियंस उन्होंने सुनाया कैसे वो इस संस्था में आए, पिछले 11 साल से जुड़े हुए हैं और एकदम बाबा के पक्की बच्ची, पूरा नियम मर्यादाओं पर चलते हैं। भले उनका प्रोटोकॉल होता है डेली सेंटर में नहीं जा पाते, लेकिन डेली उन्होंने सुनाया अपने अनुभव में, सवेरे मुरली निकाल के पूरा मुरली विधि पूर्वक पढ़ती हूँ, पूरे नियम मर्यादाओं को फॉलो करती हूँ, सवेरे शाम डेली योग करती हूँ। तो एक एक कैसे उनके जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आए, उन विघ्नों में भी अपने आप को उन्होंने कैसे संभाल के रखा, कैसे बाबा का परिचय मिला, बाबा की हेल्प कैसे मिली सारा, और कितनी निर्माणता उनके जीवन में देखने को मिलती है। तो हम बाबा के बच्चों में भी कितनी निर्माणता होनी चाहिए, महानता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा तुम दिव्य गुणों की मूर्त बनो। मधुबन क्या है, दिव्य गुणों की खान, गीत में था ना अभी, तो दिव्य गुणों की खान बनना है ताकि इस परिवार से लगे कि सचमुच भगवान का परिवार है। भगवान का परिवार कैसा होना चाहिए, कितना मीठा होना चाहिए। देवताओं से भी उत्तम ब्राह्मण है तो कितने ऊंचे होने चाहिए। तो ये परिवार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। और तीसरा क्या मिला, ये एक ही, यहाँ भाषा भी एक ही है। कौन सी भाषा है यहाँ, देवनागरी। देवनागरी ठीक है। हाँ देवनागरी ठीक है। हाँ सबकी भाषा, जब भी बाप का परिचय देते तो क्या होता है, सब बाबा एक ही एक जैसा परिचय देंगे, है ना। कई कई टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ ओम शांति वन में भी सुनते हैं, पीस पार्क में भी सुनते हैं, फिर म्यूजियम में, फिर कभी ज्ञान सोर में, शांति वन में, वो सब जगह जाते, बोला अब आत्मा परमात्मा की बातें करते रहते सारी। सबकी भाषा एक जैसी होगी, है ना। तो भाषा भी एक जैसी होगी। तो हमारी भाषा में हमको ये भी चेक करना है कि हमारी भाषा में कहीं कटाक्ष तो नहीं है, किसी को हम टोंट तो नहीं कर रहे हैं, किसी को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं, कड़वे वचन तो नहीं है, क्योंकि हमारे बोल बहुत कीमती हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से सदैव क्या निकलना चाहिए, ज्ञान रत्न निकलना चाहिए। तो ये हमारे लक्ष्य है। एक है लक्ष्य बाप समान बनना, वो तो हमारा अंतिम लक्ष्य है, लेकिन इस लाइफ में ब्राह्मण जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बहुत हैं। कि सचमुच हम सारे दिन में मीठा बोलते हैं, यही जांच करनी अपने को एक दिन, कि मैं इतना मीठा बोल रहा हूं कि सामने वाले को कुछ महसूस तो हो रही है, उसमें अपनेपन की भावना जागृत हो रही है, है ना। कौन सी भाषा हमारे मुख से निकल रही है। बाबा ने कहा तुम्हारी कितने प्रकार की भाषाएं हैं, नैनों की भाषा है, हमारी दृष्टि भी बोलती है, हम दूसरे को किस दृष्टि से देख रहे हैं सामने वाले को पता चल जाता है, या सामने वाला कैसे देख रहा है वो भी हमको पता तो चलता ना। हमारी दृष्टि कैसी है, आत्मिक दृष्टि है या दैहिक दृष्टि है, हमारी भावना कैसी है, नैनों की भाषा, दृष्टि की भाषा, इशारों की भाषा, अलौकिक इशारों की भाषा, है ना। तो ये भाषा को भी देखना है कि सचमुच ये भाषा हमारी अलौकिक है, रूहानियत है इसमें भरी हुई। और क्या बताया, चौथी बात ये ज्ञान। इस ज्ञान ने हमारे जीवन में क्या कर दिया, निहाल कर दिया और तूफान भी ला दिया एकदम। है ना, ठंडे पड़े थे ना हम संसार में, है ना, एकदम क्या बाबा ने हमारी रोशनी रोशन कर दिया इस जीवन को। ज्ञान की रोशनी है ये। ज्ञान को क्या कहा जाता है और ज्ञान की तुलना किस किस से की है, बहुत सारी चीजों से ज्ञान की तुलना की है। ज्ञान एक तलवार की तरह है, एक शस्त्र की तरह है, धारदार तलवार की तरह है। ज्ञान एक खड्ग है और ज्ञान अग्नि है, ज्ञान अंजन है, ज्ञान सुरमा है, अंजन अर्थात सुरमा, और ज्ञान गंगा। हाँ ज्ञान गंगा है, ज्ञान सागर है और ज्ञान रोशनी है। तो ये रोशनी को हमेशा जला के रखना, जहां रोशनी होती है वहां क्या होता है, वहां जानवर नहीं आते हैं। तो जानवर कौन से, माया भी ख्याल नहीं आएंगे, है ना। तो ज्ञान की रोशनी, रोज ज्ञान स्नान करना है, ज्ञान का गंगा जल से स्वयं को, ज्ञान का अमृत भी कहा जाता है, तो ज्ञान गंगा जल से स्वयं का स्नान करना है डेली। तो ज्ञान कितना श्रेष्ठ सुंदर ज्ञान दिया। सारे संसार में ऐसा ज्ञान कभी है? सारे सृष्टि के आदि मध्य के ज्ञान से हमको कितना बाबा ने भरपूर कर दिया। संसार में है कहीं ज्ञान? जब भी कोई समस्या आती है तो इस ज्ञान में सब समस्याओं का हल समाया हुआ है। लेकिन हमें समय पर वो याद रहे तो, और वो याद तब रहेगा जब हम रोजाना आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान योग का घृत डालते रहेंगे तो, नहीं तो ज्योति बुझ जाएगी, नहीं तो सवेरे सुनी मुरली और शाम को ठंडे हो जाते हैं। इसलिए मुरली तो बार 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 पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा बुद्धि रूपी पात्र इतना मलिन हो चुका है, इसमें इतना जहर भर चुका हुआ है, हमें इस जहर से प्यार हो गया है और हम इसको निकालते भी नहीं है, और दूसरा को रास्ता में निकालने के बाबा के ज्ञान के सिवाय और कैसे निकलेगा, निकले हुए तो नहीं ना। तो इस ज्ञान को बुद्धि में भरना है। जहां ज्ञान की रोशनी है वहां अंधकार, अज्ञान का अंधकार ठहर नहीं सकता है, कोई समस्या टिक नहीं सकती है। बच्चा स्कूल में वही पास होता है जिसको हर क्वेश्चन के मेथड का पता होता है। अगर मेथड ही पता नहीं है, 2 घंटे भी जाए 20 घंटे भी बैठे पास ही नहीं होंगे। इस ब्राह्मण लाइफ में भी कभी कभी ऐसा ही होता है कि समस्या आती है, बस उस समस्या को कितने महीनों से पकड़ के रखा हुआ है, उससे निकलने का मेथड ही पता नहीं है। जबकि हर समस्या का समाधान बाबा की मुरलियों में होता ही है, यहां तक किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर हम मुरलियों को बड़े ध्यान से पढ़े, तरीके से पढ़े, तन्मयता पूर्वक पढ़े, एकाग्रता से पढ़े, बड़े प्यार से उसको देखें, तो हर समस्या का समाधान बाबा की मुरलियों में समाया हुआ है। लेकिन हम फिर ढूंढते हैं एक दूसरे को, इस समस्या का हल कैसे होगा, घरों का, ऑफिस का, परिवार का, तो सब समस्याओं का हल बाबा ने मुरली में बताया हुआ है। तो ज्ञान की आंख, बाबा ने कहा ज्ञान का तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिला हुआ है। अब नेत्र को बंद कर देंगे तो क्या होगा, माया आके कच्चा खा जाएगी, फिर जब पेट में पहुंचेंगे तो पता चलेगा कहां पहुंच गए हम। इसलिए ज्ञान का नेत्र हमेशा कैसे रखना है, खुला रखना है, सुजाग रहना है, झुंझार नहीं। झुंझार क्या होते हैं, मुरली में आता है झुंझार शब्द भी, झुंझार जो आंखें उनकी जैसे थोड़ा ऐसी होती है, मिच होती है। तो ज्ञान का नेत्र हमें हमेशा खुला रखना है। और क्या पांचवी बात, ये लक्ष्य, श्रेष्ठ लक्ष्य, ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है, देवता बनना है ना। बाप समान तो है ही है, लेकिन देवी देवताओं की चलन, बाबा ने कहा अपनी चलन को चेक करो, देवता ही चलन है। उस दिन था ना साकार मुरली में, देवता ही दिमाग होना चाहिए। साकार मुरली में था ना एक दिन, मना 8-10 दिन पहले, तो हमारा दिमाग देवताओं जैसे है या कोई खुराफाती दिमाग ही है, कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो अपने दिमाग को देखना है, बाबा हमारे दिमाग को तेज करता है, रोज हमारे ब्रेन की मसाज करता है डेली, कब अमृत वेले, और दिन में नहीं करता, नुमा शाम भी, और दिन में भी करता है। ये ज्ञानी मसाज का काम करता है ना। जब भी हमको देखो योग में अगर सुस्ती आती है ना, ज्ञान का चिंतन करना शुरू कर दो, अर्थात मुरली का सोचना शुरू कर दो कि आज के दिन में बाबा ने मुरली में क्या क्या सुनाया था, कल क्या सुनाया था, बैठ जाओ, कल क्या सुनाया था याद करो, कल क्या सुनाया था, तुम बच्चे कहां बैठे हो, रूहानी हॉस्पिटल में, और रूहानी हॉस्पिटल में कैसे बैठना है, देही अभिमानी होकर बैठना है, तो इंजेक्शन काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, नहीं तो वायरस घुस जाएगा, और वायरस तो आजकल बहुत चल रहा है, कौन सा कोरोना वायरस, और उससे खतरनाक वायरस तो हमारे दिमाग में घुसे हुए हैं, डर संकल्पों के वायरस, उनको कौन मारेगा, खुद को मारना पड़ेगा, है ना। तो हम रूहानी हॉस्पिटल में बैठे हैं, अविनाशी सर्जन आया हुआ है ज्ञान का इंजेक्शन लगाने के लिए, तो हमें हमेशा देही अभिमानी होकर बैठना है। तो ये थी ज्ञान, ज्ञान एक रोशनी की तरह है, और ये श्रेष्ठ लक्ष्य, लक्ष्य हमारा देवी देवता बनना है, और छोटे छोटे लक्ष्य हमको जीवन में रखने हैं। सारे दिन में देखना है एक एक किसी एक बात को पकड़ के, अगर हम जैसे मान लीजिए मोबाइल ही चलाते हैं, तो देखना है कि आज मोबाइल में कौन सी ऐसी चीज है जिससे मेरा नुकसान हो रहा है, आज उसको नहीं करेंगे, एक दिन करके देखो कितनी खुशी होगी शाम को। छोटी छोटी बातें हैं, कौन सा ऐसा हमारा संग है जिसके साथ हमारा टाइम ऐसे बैठने से वेस्ट जा रहा है, एक दिन छोड़ दो उसको, है ना। तो ये लक्ष्य रखने हैं, श्रेष्ठ लक्ष्य। और उसके बाद बाबा ने कहा एक ही दृष्टि है, कौन सी दृष्टि है, रूहानी दृष्टि है, आत्मिक दृष्टि है, और ये आत्मिक दृष्टि हमारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है ना। पुरुषार्थ जो है हमारा अगर नीचे गिरता है तो कहां से गिरता है, दैहिक दृष्टि, दैहिक सोच चलती है, तभी तो हम गिरते हैं। और गिरते गिरते कहां पहुंचे, मुरली में था, गिरने और ऊंचा चढ़ने की बात थी, कहां थी आज के मुरली में भी, कहां थी, बाबा ने कहा ऊंचा स्वर्ग दिखाते हैं, जब तुम्हारी ऊंची स्थिति होती है तो ऊंचा स्वर्ग दिखाते हैं और नीचे गिरते हैं तो नरक। तो ये श्रेष्ठ लक्ष्य है, उस लक्ष्य प्रमाण हम चल रहे हैं, अर्थात नेक्स्ट आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि आगे है। नेक्स्ट वृत्ति, वृत्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? कल्याणकारी, बेहद की वृत्ति, छोटी मोटी नहीं, संकुचित विचारधारा नहीं होनी चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, बेहद का होना चाहिए, जाति पाति ऊंच नीच राष्ट्र राज्य बाजी इन सबसे ऊपर होना चाहिए, हम ऐसे हैं तुम वहां से हो ऐसा कुछ नहीं, इन सबसे ऊपर निकलना चाहिए। तो व्यापक वृत्ति होनी चाहिए, बेहद की वृत्ति। और नेक्स्ट है धर्म कर्म, ब्राह्मणों का धर्म कौन सा है, कौन सा धर्म है ब्राह्मणों का? सुनना और सुनाना, धंधा, ये धंधा भी हो गया है ना। धर्म है शांति, तो हम शांति में रहते हैं, अंदर ही अंदर शांति से स्वयं को भरपूर करना है। और नेक्स्ट ब्राह्मणों के कर्म, ब्राह्मणों के कर्म कौन कौन से हैं? स्वयं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के मार्ग पर चलाना और दूसरों को भी रास्ता बताना और दूसरों को भी ज्ञान सुनाना, दूसरों का भी बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। तो ये 9 बातें थी, तो इन पर हमको विस्तार करना है, केवल वो 9 बातें याद नहीं रखने की, उन पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक बाप ही संसार है तो संसार में क्या क्या होना चाहिए, है ना? बाप है, परिवार है, भाषा है, श्रेष्ठ लक्ष्य है, धर्म कर्म दृष्टि वृत्ति कृति, ये सब चीजें कितना सुंदर ज्ञान है, अगर बैठ जाए तो घंटों बीत जाते हैं चिंतन करते करते, मुरली में आत्मा डूब जाए। तो ये थी 9 बातें थी। और उसके बाद बाबा ने कहा कि ये सारा गीत मन में बजता कि नहीं बजता है? ये सारी बातें मन में गीत की तरह गूंजनी चाहिए, है ना? और उसके बाद बाबा ने क्या कहा गीत के बाद? दिनचर्या, ब्राह्मणों की दिनचर्या भी कैसी है, आज बताया ना मुरली में, क्या बताया दिनचर्या के बारे में? नियम रीति रसम प्रीति न्यारी और प्यारी है। और इस ब्राह्मण लाइफ में तुम बच्चे क्या बन गए आकर? मुरली पड़ी नहीं सारे दिन में, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल, क्या बन गए पीछे वाली बहने बताओ? परियां बन गए, परियां, बताया कि नहीं बताया? बाबा ने कहा कितनी सुंदर परियां बन गए तुम, ब्राह्मणों की ब्रह्मा कुमारियों की चाल ही अपनी है, दुनिया वाले समझ नहीं पाते हैं। दिनचर्या हमारी टोटल चेंज होगी, सारी दिनचर्या कैसी है हमारी, सुबह 3:30 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक एकदम व्यवस्थित दिनचर्या है ना? मन की दिनचर्या भी बाबा ने हम सबको बना कर दी है, बाहर लगी ना दिनचर्या सुबह 3:30 से रात्रि 10 बजे तक, तो उस दिनचर्या के अनुकूल हम चलते हैं। संसार में जो स्कूल की दिनचर्या और हमारी तो बेहद की यूनिवर्सिटी है, सभी स्टूडेंट बन गए सवेरे सवेरे, कैसे देखते हैं मुरली का टाइम होता तो कॉपियां पेंसिल हाथ में लेके डायरी लेके भागे होते हैं मुरली की तरफ, है ना? जैसे बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, कितनी खुशी खुशी जाते हैं, है ना? 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, आज भी 0 डिग्री था ना, तो 0 डिग्री टेम्परेचर में भाग भाग के जा रहे हैं, खजाना कितना बड़ा मिलने वाला है। लेकिन होता क्या है, बाबा ने कहा कोई कोई खजाने को वहीं छोड़ के जाते हैं, तो बुद्धि में रखना पड़ेगा ना, सवेरे सवेरे ऊपर से परम धाम से आया भगवान हमको खजाना देने के लिए, सारे खजाने लुटाने के लिए, और वहीं हम झोली झाड़ के आ गए तो फिर कैसी बात बनेगी? फिर क्यूरियोसिटी तो बनी जाती है कि आज दूसरी मुरली सुननी, आगे दौड़ पीछे चौड़, फिर मुरली बैठेगी कहां मुरली में? तो ऐसा नहीं हमको काले वाली मुरली के ऊपर ज्यादा ध्यान, आज के दिन में आज की मुरली के ऊपर अच्छी तरह उसमें नहा धो के पीछे पड़ जाने का, उसे तो मुरली बुद्धि में बैठेगी, नहीं तो बैठती नहीं, इतना पवित्र ज्ञान है और बुद्धि रूपी बर्तन हमारा इतना मलिन हो चुका हुआ है, इतना विष भर दिया उसमें, तो ये अमृत ठहरेगा कैसे? इसलिए बार 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 मुरली पढ़नी पड़ेगी, जबरदस्ती मन को डुबाना पड़ेगा उसमें, मानना के मानता नहीं है, उसको मनाना पड़ता है, मानने के बच्चे की तरह, तूफानी बच्चे की तरह है, तो हमको उसकी कमजोरियों का पता, हमारे मन की कौन कौन सी कमजोरियां हैं वो हमें स्वयं को ही पता, दूसरा नहीं करेगा आगे, इसलिए स्वयं को मन के समझना है कि कैसे हम मुरली को रोचक तरीके से कैसे याद करें कि तुमको थोड़ी याद रह जाए। उसमें मुरली के याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, मुरली के केवल 10-15 शब्द याद कर लीजिए आप, है ना? जैसे पंख है, पंख में के बारे में बाबा ने क्या कहा, दुआओं के बारे में क्या कहा, गीत कहाँ गाया, दिनचर्या कहाँ गया, अर्चेता बाप किसको देख रहे हैं, ये सारी चीजें, महिमा किसकी है, गायन किसका है, कौन कौन से झूले दिए हैं, तो ये कुछ शब्द ले लेने, सारा सेंटेंस याद नहीं आता है, कुछ एक शब्द भी याद रहेंगे ना तो धीरे 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 याद रहना शुरू हो जाएगी मुरली, नहीं तो रहती नहीं है वो। तो ये दिनचर्या, ब्राह्मणों की दिनचर्या कैसी है, ये अनोखी दिनचर्या है, है ना, सारे सवेरे शाम कैसे मेडिटेशन भी करते हैं, दिनचर्या में संबंध संपर्क में आते हुए हमको सबके साथ कैसे चलना है, तो सब चीजें हमारी दिनचर्या कैसी अनोखी दिनचर्या होगी। और फिर बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन का गायन क्या है, क्या गायन बताया, मौन चुप रहना है, ब्राह्मण देवी देवता है न मैं, और क्या गायन बताया आज की मूल्य अनुसार, झूले दिए हैं, हाँ झूलना है, तो आप झूले में बैठे लग रहे इसलिए बोल नहीं रहे, तो कौन कौन से झूले दिए, कितने झूले दिए, सबसे पहले कौन सा झूला दिया, तो वैसे सबसे पहले ज्ञान का झूला, लेकिन बाबा ने अतिंद्रिय सुख का झूला, फिर ज्ञान का झूला और शांति का झूला, खुशी का झूला, प्रेम का झूला, और जितने मर्जी झूले बना लो अपने घर की बात है, तो इस झूले हम झूलते रहते हैं या कहीं और ही बैठे रहते हैं, और एक लास्ट में और कौन सा झूला है, हाँ परमात्म गोदी का झूला, वो लवलीन अवस्था है, ये विशेषताएं हैं। तो ये गायन था, और इसके बाद विशेषताएं, कौन सी विशेषता है, इन बाबा ने कहा जो ऊपर सारी बातें बताएं, इन विशेषताओं को स्मृति में रखेंगे तो क्या बन जाएंगे, इन विशेषताओं को स्मृति में रखेंगे तो क्या बन जाएंगे, समर्थ आत्मा बन जाएंगे, और समर्थ आत्मा स्वतः डैश बन जाती है, क्या क्या बन जाती है, शुद्ध श्रेष्ठ, और क्या बन जाती है, आई की मुरली में है, समर्थ आत्मा स्वतः नष्ट मोह बन जाती है, था कि नहीं था, तो याद रखेंगे तभी तो इसका मतलब नष्ट मोह हम नहीं बने, याद ही नहीं रखेंगे तो बनेंगे कैसे, तो स्वयं के प्रति बहुत गंभीर होने की जरूरत है, ढीले ढीले चलने से होने वाला नहीं है कुछ भी, बिना ज्ञान की योग लगेगा भी कैसे, ज्ञान ही हमारी बुद्धि में रहेगा नहीं तो फिर मन तो दूसरा दूसरा सोचता रहेगा, योग चीज क्या है, योग मानो बाबा के ज्ञान को याद करना भी योग है, सेवा करते हुए बाबा की याद रहनी वो भी योगी है, एक आज बताया ना बाबा ने कर्म योगी, तो मुरली के जो पॉइंट है हमारी तो आत्मा की खुराक है, अब खुराक खाएंगे नहीं तो आत्मा कमजोर रहेगी, फिर योग कैसे लेगा, योग के लिए तो बहुत ताकत चाहिए, ताकत माना क्या, पंख जो बाबा ने बताया ज्ञान योग के पंख, अब ज्ञान बुद्धि में है नहीं, बैठ गए हम योग करने तो उड़ नहीं पाएंगे क्योंकि पंख तो टूटा हुआ ज्ञान का, और हम योग दूसरा लगा रहे दूसरा पंख तो लगेगा नहीं, पहले ज्ञान का पंख लगाना पड़ेगा, तो ज्ञान को बुद्धि में रखना है बहुत जरूरी है, ये तो एमरजेंसी है, ये इसके बिना दूसरा कोई उपचार नहीं है, तो ज्ञान को बुद्धि में रखना है, एक प्रण करना अपने प्रतिज्ञा के रोज की मूल्य के 10-15 पॉइंट तो बुद्धि में होने ही चाहिए, चलते फिरते कोई भी मिले तो इसकी ज्ञान की चर्चा करनी है, नहीं तो दूसरी चर्चा तो अपने आप ही चालू हो जाती है, और ज्ञान की चर्चा करने के लिए थोड़ा संकोच लगता है, कोई कोई भाई हैं रास्ते में खड़े होकर पूछते हैं तो हमको भी फिर याद रखना पड़ता है जबरदस्ती, वो पीछे बैठे हैं कॉर्नर में तो अच्छी आदत है, तो क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है, ज्ञान की चर्चा करना, उसके बिना वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, झर्म हुई जंग हुई की बातें करेंगे, इधर उधर का परचिंतन करेंगे, बुद्धि में किचड़ा भरेंगे, दुर्गंध आएगी, मच्छर आएंगे, खुद को काटेंगे, फिर बीमारी होगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कितनी मुसीबत हो जाएगी, वायरस फैल जाएगा, खुद भी बीमार, दूसरों को भी बीमार करेंगे फिर माया कच्चा खा जाएगी, तो ज्ञान को बुद्धि में रखना जरूरी है, तो ये बाबा ने कितने प्रकार के झूले दिए है ना, झूलों को बुद्धि में रखना है। फिर उसके बाद बाबा ने और क्या बताया, बाबा ने कहा हाँ पुराने संसार इतनी सब बातें जानते हुए भी बुद्धि रूपी पांव थोड़ा पुराने संसार में तो नहीं चला जाता, आकर्षित तो नहीं हो जाते हो, पुराने संसार में देख लिया 63 जन्म क्या किया, तन भी गवाया, धन भी गवाया, मन भी खराब किया, और जन भी संबंध संपर्क भी गवाया, धन भी गवा दिया, और ये सब गवाने के बाद भी फिर भी हम जा रहे हैं वापस, रहा क्या, तन भी कैसा हो गया, रोगी तन हो गया, कितने टेढ़े वांग के तन हो गए, किसी के दांत गिर रहे हैं, किसी के बाल ही उड़ रहे हैं, कैसे तन हो गए बताओ, टेढ़े मेढ़े तन हो गया, तो ये तन कितना खराब हो, कितनी कंचन काया दी थी बाबा ने, और क्या हो गया हमारे हालत क्या हो गई देखो, और धन, धन के बारे में क्या कहा, धन कमाते भी तो काला धन, अच्छा अगर सफेद भी होता है तो दिखा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि डर है कि गवर्नमेंट ना ले जाए या डाकू ना लूट लाए, तो कितना खतरा ही खतरा है। और मन कैसा हो गया है, मन भी कितना मैला हो गया है, मन के ऊपर कितनी मैल बड़ी पड़ी है, मन मनावा तो होता ही नहीं है। और जन के बारे में क्या बताया, संबंध संपर्क भी कितने दुखदायी हो गए हैं, दुख ही दुख है ना। तो बाबा ने कहा अगर सब बातें स्मृति में रहेंगी तो क्या होगा, फिर नए संकल्प तो हैं, हाँ वो भी है, नहीं लेकिन ये अगर बातें रहेंगी तो आप धोखे से बच जाएंगे, माया के धोखे से बच जाएंगे। और धोखा खाना अर्थात दुख उठाना है ना। और फिर नए संकल्प, ये भी बाबा ने कहा कि तुमको क्या दिया है, तुम बच्चों को नए संकल्प, नई भाषा, और तीसरा क्या बताया है, हाँ नए कर्म। तो संकल्प कौन कौन से नए होने चाहिए, एक तो मुरलियों में हमको संकल्प मिलते हैं, लेकिन मुरलियों के आधार पर ही हमको कुछ नए संकल्प क्रिएट करने हैं। कौन कौन से, कोई योग से संबंधित संकल्प बताओ, जब हम योग में एकदम जागृत होके बैठे एकदम सुस्ती ना आए तो कौन से संकल्प होने चाहिए, क्योंकि सारा खेल संकल्पों के ऊपर ही है। अगर बहुत सुंदर विचार संकल्प चल रहे हैं मन बुद्धि में तो बुद्धि एकदम फ्रेश रहती है। बासी खाना खाएंगे डेली वही तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा, इसलिए नए संकल्प की रचना करनी है। तो योग में बैठे भी कोई अच्छे अच्छे संकल्प रचने हैं। अगर ज्वालामुखी होकर ना तो कौन सा संकल्प रचना है, मैं ज्वाला देवी हूं, और लग्न में मगन, और क्या सोचेंगे, सोचना परमात्म शक्तियों की आग की वर्षा ऊपर से हो रही है, नए संकल्प, और मेरी आंखों से आग के गोले निकल रहे हैं, सब भस्म हो रहे हैं हाँ सबके विक्रम भस्म हो रहे हैं। ऐसे अच्छे अच्छे नए से ज्ञान से संबंधित कोई नए संकल्प की रचना करनी है। और नए कर्म कौन से होने चाहिए, नए कर्म कौन से, ये भी सोचना है। तो ये थी बात। फिर नेक्स्ट है सेवाधारी टीचर बहनों से बाबा ने बात की। तो टीचर बहनों के बाबा ने कहा कि कौन है वो, त्यागी तपस्वी आत्मा है, सेवाधारी है। तो बाबा ने कहा सेवा का फल तो मिलता ही है, वृद्धि होती है, लेकिन जैसे बाप ने तुम बच्चों को चुना ऐसे तुम बच्चे भी किसको चुनो, प्रजा को चुनो। तो राजा नहीं बनाना किसी को, तो राजा बनाना है, प्रजा भी चुननी है राजा भी चुनने है। राजा चुनेंगे तो हम महाराजा बन जाएंगे, अगर प्रजा चुनेंगे तो राजा ही रहेंगे, तो देख लो क्या करना है। तो ये बताया, और क्या बताया कि निर्विघ्न सेवा, निर्विघ्न की लहर फैलाओ, ना केवल स्वयं बल्कि सेंटर भी निर्विघ्न, हर स्टूडेंट भी निर्विघ्न, वातावरण कैसा हो, शक्तिशाली वातावरण हो। तो टीचर के साथ बाबा ने ये मुलाकात की। नेक्स्ट फिर अलग अलग ग्रुप थे, हाँ नेक्स्ट अगर फिर सेवादारियों का है तो संतुष्टता और सफलता, ये दो चीजें होनी चाहिए। और इसके बारे में क्या क्या बताया बाबा ने, हाँ जी दुआएं कमाने का साधन क्या बताया, हाँ जी संतुष्टता तो परिणाम है, हाँ जी करना। अगर कोई सामने वाला रॉन्ग भी है तो उसको हिम्मत ही नहीं बनाना, उसका पहले सुनना है, हाँ जी करते 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 अगर हाँ जी करेंगे तो सामने वाला भी अपनी गलती की महसूसता को अनुभव करेगा, महसूस करेगा। अगर हम उसको तुरंत कह देंगे तो बाबा ने कहा ना गिरा देते हो, तो अगर कोई गिरा हो तो हमारा फर्ज क्या बनता है, उसको उठाना कि ठोकर मारना। अगर हम ठोकर मानेंगे तो क्या करेगा, वो ठाकुर बन जाएगा, फिर हमको पूजा करनी पड़ेगी। अगर हम उठाएंगे तो हम ठाकुर बन जाएंगे, अब ये देख लो किसको ठाकुर बनाना है। तो उठाना है, किसी को गिराना नहीं है। चाहे कोई भी आत्मा, बाबा ने कहा कैसे भी वो संबंध संपर्क में भी दुआएं कमानी है तो सेवा में सफलता मिलेगी। और हम मधुबन में आए हैं तो मधुबन में क्या है, दुआओं के भंडार पर बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार की सेवा मिले तो हमको तुरंत रिएक्ट नहीं करना, उसमें करना ही नहीं है वैसे तो रिएक्ट ना। अगर कोई गलत भी है तो उसको युक्ति से समझाना, उसमें हिम्मत भरनी है। इसलिए बाबा जब भी आते तो हमको सबसे पहले हमारी क्या करते हैं, महिमा तो करते हैं ना। कभी कहते हैं तुम नलायक कहीं का आ गया, बोलते हैं कभी, अब अपनी नलायकी का तो पता ही होता हमको, हमारे अंदर कितने अवगुण है, फिर भी बाबा मीठे बच्चे कहता, पता तो है मीठे तो मैं नहीं है, फिर भी बाबा मीठे कहता है। और फिर धीरे से बाद में बोलेगा तुम बंदर बुद्धि भी थे और सुनने में कितनी खुशी होती है, है? तो बाबा ने देखो डायरेक्ट थोड़ा है बोला, बंदर बुद्धि बच्चों को याद प्यार, ऐसे बोला कभी? तो पहले बाबा हमारी महिमा करता है। तो हमको भी सबकी महिमा ये सीखना है, ये भाषा होनी चाहिए। जब हमारे सोच में, हमारी भाषा में, बोल में मुरली की से समानता हो जाएगी, तब हमारा बाप समान बनने के प्रति हमारे कदमों बढ़ते जाएंगे। तो देखना है हमारी सोच में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, हमारी भाषा शैली वैसी बनती जा रही है, या लौकिकता है उसमें, रूहानियत से कहीं, रूहानियत से दूर है कहीं हम, तो देखना है इस चीज को। तो ये था कि दुआएं कमाने का भी टाइम चल रहा है, और इसका दुआएं जमा करने का साधन है हांजी का पाठ पक्का करना, है ना। और फिर नेक्स्ट ग्रुप था सेवादारियों के साथ। सेवादारी अर्थात कैसे करनी है सेवा, कर्मयोग की स्थिति में, कर्म करते हुए हमारा योग, क्योंकि सारे दिन में 24 घंटे में या जितना भी हम, जितना समय हम जागृत अवस्था में रहते हैं, तो सारा दिन तो योग में नहीं बैठेंगे, अधिकतर हमारा टाइम तो कर्म क्षेत्र पर जाता है। तो कर्म क्षेत्र पर भी हमें योग के अलग अलग युक्तियां क्रिएट करनी है खुद ही। कैसे हम कर्म करते हैं, हमारा बुद्धि योग भाव से जुड़ा है, जैसे नेचुरली है जो भी हम कर्म करते हैं, जिससे हमारा ज्यादा प्यार होता है तो बुद्धि योग कैसे जाता रहता है उसके प्रति, वहां मेहनत थोड़ी लगती है, कोई लगती है मेहनत। जिसका मम्मी से प्यार होगा तो मम्मी उसको याद आएगी, बेटे से प्यार होगा तो बेटे को बार बार फोन करेगी, है ना। यहां भी कोई कोई तो करते रहते हैं, दिखता रहते हैं, सेवादारी आते हैं, दिखते तो रहते हैं कौन कौन करते, क्या क्या करते रहते हैं। हाँ, घर में जरूरी काम होते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार टू मच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको निर्वंदन बनने का टाइम है। मधुबन में आना माना निर्वंदन होकर आए आप, और यहां भी हमने नए नए बंधन क्रिएट कर दिए आकर, तो फिर कैसे बंधन मुक्त होंगे। थोड़ा सा टाइम है, फिर भाव ने कहा अंत मत सो गति होगी, पता नहीं कब आत्मा इस शरीर से निकल जाए और साथ में कौन से संस्कारों को लेकर जाए। तो हमको निर्वंदन होने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, चांस मिला है। तो हमको कर्म करते भी बाबा से अलग अलग तरीके से कैसे हमारा योग लगे, खुद ही युक्तियां क्रिएट करनी है, कर्मयोग्य स्थिति। और बाबा ने कहा कर्मयोग्य स्थिति में क्या क्या होगा, तीन चार निशानियां बताई। अगर कर्मयोग्य स्थिति है तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी, दूसरा खुशी रहेगी, और हल्के रहेंगे, सफलता मिलती रहेगी, हाँ सफलता भी मिलती रहेगी, ये भी था मुरली में। तो ये देखना हमारी स्थिति कर्मयोग्य जैसी है ना, या कर्म होगी है। और नेक्स्ट, और कौन सा ग्रुप था, यूथ। यूथ के लिए क्या बोला, यूथ विंग 85 में बना था, और अभी कितने विंग है, 20 विंग है, 20। कौन कौन से पता किसी को, 20 विंग कौन कौन से है, क्योंकि पता होना चाहिए हम सबका। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन विंग, फिर आर्ट एंड कल्चर विंग, बिजनेस विंग, एजुकेशन विंग, रूरल विंग, रिलीजियस विंग, सोशल, स्पोर्ट्स, पार्क, साइंटिस्ट, आईटी विंग है, फिर मेडिकल, मीडिया, मीडिया विंग, मेडिकल विंग, है ना, वुमेन विंग, यूथ विंग, फिर दो ट्रांसपोर्ट के विंग है, 20 विंग है टोटल। तो सारे याद रहने चाहिए हम लोगों को। स्पार्क तो पहले स्पार्क हो गया, वो सबसे पहले स्पार्क ही हुआ। पांच ऐसे पांच हैं, स्पार्क, सोशल, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स, एक और है ज्यूरिस्ट तो अलग है, साइंटिस्ट विंग, सोशल विंग, स्पार्क विंग, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स, साइंटिस्ट, चलो गिनती कर लेना बाद में। तो विंग्स ये तो 85 में, तो यूथ विंग के लिए बाबा ने क्या बोला, यूथ के अंदर शक्ति है तो कहीं ना कहीं तो लगानी है, लेकिन उस यात्रा में हमको ऐसा नहीं कि यात्रा दिखाई दे, वो उसमें रूहानियत होनी चाहिए। बाबा ने कहा केवल बोलने से सेवा नहीं होती है, अपने चेहरे से भी सेवा होती है। कोई हमको देख के, ऐसा नहीं हो कि हमारे चेहरे के 12 बजे हों तो उसके भी देख के हमें 12 बज जाएं, हमारा चेहरा खुश होना चाहिए। और खुश अब होता है जब प्राप्तियां हमको या स्मृति में रहती हैं कि हमको क्या क्या मिला है, कौन मिला है, हमारा कौन साथी है। तो ये स्मृतियां रहेंगी तो चेहरा भी वैसा रहेगा, है ना, नहीं तो बोलेंगे चेहरा कैसा, बोलेंगे तो शक्ल ही ऐसी, क्या करें अभी। तो ये था यूथ विंग के लिए बाबा ने कहा कि सेवा करनी है। फिर बहुत सारी बातें बताई कि बस से भी करो, पैदल भी सेवा करो, और उससे पहले अगर जाते हैं तो इंटरव्यू पहले से तैयार रखो तो आवाज फैलेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत सारी बताई। और एक लास्ट में ग्रुप कौन सा था, लास्ट वाला ग्रुप कौन सा था, मुरली वाला, राजनेताओं का था ना। तो राजनेताओं के प्रति बाबा का संदेश था, कौन सा संदेश था, बाबा ने कहा कि वो देश की प्रगति तो चाहते हैं, देश के प्रति प्रेम है, बहुत योजनाएं भी निकालते हैं, शुभ भावना भी है, लेकिन दो चीजें हैं जिसके कारण नहीं कर पाते, कौन सी, स्वार्थ और दूसरा ईर्ष्या। ये दो चीजें इसलिए वो प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने क्या सोल्यूशन बताया, कैसे मुक्ति होंगे उससे, उनको स्पिरिचुअल पावर दो। उनके पावर तो बहुत, उनके पास प्राकृतिक पावर है, वर्ल्ड संसार के ज्ञान की शक्ति है, लेकिन स्पिरिचुअल पावर उनके पास नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम भी स्पिरिचुअल अर्थात सोल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनको स्पिरिचुअल पावर दो, तो फिर वो फलीभूत होगी उनकी सेवाएं भी। तो उनको ये संदेश देना है राजनेताओं को, तो ये उनके प्रति था। तो ये कितनी बातें सुनी मुरली में, कितनी सारी बातें थी, ढेर सारी बातें थी। और स्लोगन क्या बताया आज का, लास्ट तो फास्ट जाना तो क्या करो, धीरे धीरे चलो है, और साधारण और व्यर्थ संकल्प ये नहीं होने चाहिए। तो कौन से संकल्प होने चाहिए, समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। तो ये सारी मुरली थी। तो फिर से हम रिवाइज करते हैं, सबसे पहले बाबा ने किसको देखा, कौन सा संसार, रचयिता बाप ने किसको देखा, अपने भी साथ ही है अलौकिक संसार देखा। इस संसार में क्या देखा, हर आत्मा विशेष आत्मा है, हर आत्मा महान आत्मा है, और हर आत्मा कैसी है, स्वराज्य अधिकारी है, हर आत्मा अविनाशी राज तिलकदारी है, हर आत्मा तख्तनशीन है, तिलकदारी है, और ताज भी मिला हुआ है। फिर बाबा ने नौ बातें बताई, कौन कौन सी, एक बाप और एक परिवार, एक भाषा, एक लक्ष्य, एक धर्म, एक कर्म, एक दृष्टि, एक वृत्ति। अब इनका विस्तार करना फिर साथ बीच बीच में, एक दृष्टि है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, क्या हमारी दृष्टि में भगवान की ताकत बढ़ती जा रही है, क्या रोज हम अपनी आंखों को भगवान की रोशनी से भरपूर करते हैं, उसकी लाइट माइट हमारी आंखों में जमा करते हैं, या किसी और की दृष्टि लेके चले जाते हैं। भगवान की दृष्टि हमारी आंखों में एकदम इकट्ठी हो जानी चाहिए जमा। बाबा ने कहा अंत में आंखें क्या दिखाई देंगी, बड़े बड़े बल्ब दिखाई देंगे, लाइट दिखाई देगी, तुम्हारा शरीर नहीं दिखाई देगा, लाइट के गोले दिखाई देंगे। तो पहले से आंखें में वो रोशनी भर के रखी होगी तभी तो होगा ना, नहीं तो फिर आंखें बंद हो जाएंगी फिर बैठे बैठे ही। तो ये था, ये नौ बातें थी। फिर बाबा ने फिर बताया कि नए संकल्प होने चाहिए, नई भाषा और नए कर्म होने चाहिए। फिर आप झूले बताए, कौन कौन से झूले बताए, अतीन्द्रिय सुख का झूला, प्रेम का झूला, खुशी का झूला, शांति का झूला, ज्ञान का झूला, परमात्म गोदी का झूला, ये विलीन अवस्था है। ये सारी विशेषताएं याद रहेंगी तो नष्ट मोह स्मृति सुस्वत बन जाएंगे, समर्थ बन जाएंगे। और बाबा ने कहा इतनी बातें होते हुए भी कहीं पुराने संसार में अपना पांव तो नहीं रख देते हो, वो आकर्षित तो नहीं करता रहता है, पुराने संसार में अपना पांव रख करके क्या क्या किया, तन मिगवाया, धन मिगवाया, मन मिगवाया, और संबंध संपर्क में भी ऐसे हो गए। तो ये 63 जन्म क्या किया, वो अनुभव किया, ये अनुभव करने के बावजूद ये करते तो क्या कहेंगे उसको, है ना। तो ये वाली थी। फिर बाबा ने टीचर्स बहन से बात की, सेवादारी अर्थात त्यागी तपस्वी, निर्विघ्न, स्वयं भी निर्विघ्न, दूसरों को निर्विघ्न बनाने वाले, और वातावरण को शक्तिशाली बनाने वाले। जैसे बाप ने तुम बच्चों को चुना, ऐसे तुम बच्चे औरों प्रजा को चुनो, है ना। तो ये बात थी। फिर नेक्स्ट था अलग अलग ग्रुप से दुआएं कमाने का टाइम है, दुआएं कमाने का साधन बताया कि हांजी करना, किसी को दिलासा देना, हिम्मत ही नहीं बनाना, उसको ठोकर निभाने को, गिरा हुआ तो उसको उठाने का हमारा फर्ज बनता है, गिराने का फर्ज नहीं बनता है। तो ये चीजें थी। फिर यूथ विंग के प्रतिभाव ने बताया, यूथ अर्थात शक्तिशाली है, सेवा करने वाले है, तो कैसे जिस्मानी और रूहानी यात्रा कैसे, उसका बताया कि रूहानी जिस्मानी यात्रा नहीं दिखाई दे, उनको रूहानियां दिखाई देनी चाहिए, खाली बोलने से सेवा नहीं होती, चलन और चेहरे से भी सेवा करो। तो यूथ में बताया, फिर पैदल भी कर सकते हो और ये भी। फिर राजनेताओं से, और फिर लास्ट में वरदान, संगठन में लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य और लक्षण कैसे होने चाहिए, अलविलापन नहीं होना चाहिए, अटेंशन देकर और अपने को एग्जाम्पल बनाना है, सैंपल बनाना है, तो वो शक्तिशाली बनेगा। और लास्ट में अगर लास्ट ऑफ फास्ट जाना है तो व्यर्थ और साधारण संकल्पों को समाप्त करो। ओम शांति।